जय मां। श्री अरविंद की लेखनी, उसमें प्रवेश करने के पहले एक बात है जो मुझे बार बार स्पष्ट होती है, और वो ये है कि मानवीय भाषा, मानवीय अनुभव और जो भगवान की भाषा है और वह जो अनुभव है जिसकी वो बात कर रहे हैं, कई बार ये बहुत ही भिन्न होते हैं। केवल एक्सटेंशन नहीं होता है किंतु क्वालिटी में अलग होते हैं। ये समझने में बहुत बड़ी समस्या आती है। फॉर एग्जांपल, जब प्रेम की बात हो रही, यहाँ प्रेम और मृत्यु का संघर्ष, तो हम स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि प्रेम, वह प्रेम जिसको हम जानते हैं, मानवीय प्रेम। तो मानवीय प्रेम अगर वही सब कुछ है तो स्पष्ट ही ना रूपांतरण की बात है ना कोई और बात है। हम जैसे प्रेम करते हैं, मतलब यहाँ तक कि बदलने की भी कोई बात नहीं है। कई बार लोग इस बात को भी उठाते हैं कि श्री अरविंद कहते हैं कि सब कुछ तो माँ कर रही हैं। ये सब भ्रांतियाँ हैं, पहले इसको एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए हमारे मन में। इस पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि जो भगवान का खेल है वो योग माया से छिपे हुए हैं, और बाहर में जो खेल हो रहा है वो कुछ ऐसे हो रहा है कि जैसे पीछे से कोई प्रॉम्प्टिंग आती है और जो सामने खड़ा हो, जो एक्टिंग रोल प्ले कर रहा है, वो उस प्रॉम्प्टिंग को पीछे से नहीं ठीक से सुन पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है, या वो भाषा से ही अनभिज्ञ है। तो वो जो एक्टिंग कर रहा है वो अर्थ का अनर्थ बना रहा है। ये है मूल, एकदम बिल्कुल सिंपल शब्दों में, जिसको प्ले ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस कहा गया है। तो भगवान जब एक शब्द प्रयोग करते हैं और जब मनुष्य उसको समझता है और फिर उसके अनुसार कार्य में लाता है, तो बहुत बड़ी समस्या होती है। इसीलिए बिना रूपांतरण के पूरी तरह से ये एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स ये है कि श्री अरविंद को हम लोग पढ़ते हैं ताकि हमारे रूपांतरण में सहायता मिले, और ये भी सच है कि बिना रूपांतरण के श्री अरविंद को हम पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। जितना हमारा रूपांतरण होता जाएगा वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। वही वाणी है, वही भाषा है। और इसमें एक जो मूल चीज़ हमको ये समझनी है कि ये संसार कई परतों में लिपटा हुआ है, और हम जहाँ पे खड़े होते हैं, जिस परत में उलझे होते हैं, हमको वही सत्य लगता है और सारा संसार वैसा ही प्रकट होता है। भगवान भी वैसे दिखते हैं, स्वयं के बारे में भी हमारा यही आत्मदर्शन होता है। ये ठीक है, ये एक प्रकार का स्टेप है, लेकिन अगर हम ये समझने लगे कि यही समझ सब कुछ है, तब समस्या है। जैसे एक बच्चे को अगर आप बताएंगे कि ई ए बी सी डी ई पढ़ता है, तो उसको आप ये कहेंगे कि ई, बच्चे पढ़ते हैं ना अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं, ई इक्वल्स टू एलिफेंट। अब हिंदी में पढ़ेंगे तो ई से ईख। अब ई से ईख उसको समझ आती, ईख से मतलब है गन्ना, जो लोग हिंदी भाषा से बहुत परिचित नहीं है। लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे ई से ईश्वर, तो उसके लिए बहुत एक ऊपर, वो ईश्वर से ये समझ रहा है कि मेरे घर में जो मूर्ति है जिसकी पूजा हो रही है, वही ईश्वर है। तो जैसे जैसे ये परतें खुलती हैं, वैसे वैसे वही जीवन का सत्य वो हमको एक नई दृष्टि से उद्घाटित होता रहता है। इसी को योग की यात्रा में प्रगति कहते हैं, कि जब इसको माने का है रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हम उसी सत्य को जो एक तरह से हम देख रहे थे, अब वो बिल्कुल नए दृष्टि बिंदु से नई दृष्टि आती है एक्चुअली, और हम उसको बिल्कुल अलग ढंग से देखने लगते हैं। यहाँ तक कि वो चीज़ जो हमको शुरू में लग रही थी कि पीड़ा दे रही है, और लगता था कि अरे संसार कैसा है, पीड़ा ही पीड़ा है, वो नई दृष्टि से हम देखते हैं। योगियों ने अनुभव किया है कि आनंद ही आनंद है, अब पीड़ा में भी उनको आनंद हो रहा है, जिसको बाहर से लोग पीड़ा कहेंगे। तो ये दृष्टि बदलती है, और इसी के साथ जीवन का रहस्य उद्घाटित होने लगता है, और जीवन की नियति, ये सारी चीज़ें उद्घाटित होती हैं। तो ये हमको समझना है कि जो डिबेट है सावित्री का यम के साथ, वो मूल में प्रेम और मृत्यु का जो वाद संवाद है। तो प्रेम क्या है? प्रेम वह प्रेम नहीं है जिससे हम ये कि भाई हम सबको प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं। मनुष्य प्रेम नहीं करता है, ये हम पहले समझ लें। मनुष्य को प्रेम करना नहीं आता है, क्योंकि प्रेम का जो ओरिजिन है, जिस ऊंचाई से आता है प्रेम, जहाँ से आता है, वो अभी उसका स्वाद भी उसने नहीं चखा है। हम तभी कोई चीज़ बता सकते हैं ना, जैसे मान लो किसी ने हंस नहीं देखा, उससे आप कहो कि हंस क्या होता है, तो उसने पढ़ रखा है कि सफेद रंग का होता है, ऐसे होता है, तो वो क्या बनाएगा? बगुला। वो कहेगा यही हंस है, क्योंकि उसको अंतर ही नहीं पता है। लेकिन जब किसी ने भगवान के प्रेम का स्पर्श सच में चख लिया, केवल एक इमोशनल फर्वर की बात नहीं है कि थोड़ा मन में भाव अतिरेक हो गए, थोड़ा इमोशनल टच हो गया, भजन कीर्तन हो गया तो वो प्रेम टच कर लिया, नहीं, वो प्रेम बहुत ही अलग है, अद्भुत है। वो तो प्रेम ऐसा भी है कि वो शीश काट दे, महाकाली का प्रेम। जिन्होंने स्पर्श को अनुभव किया है वो क्या कहते हैं, कबीरदास जी क्या कहते हैं, शीश कटाए भूई धरे तब बैठे घर माही। घर में एंट्री पॉइंट उसी यही है कि तुम अपने अहंकार को पूरी तरह खो दो। अगर अहंकार लेके चलना है तो नहीं जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि जिस प्रेम की बात सावित्री में हो रही है वो मानवीय सीमा में आया है, लेकिन वो प्रेम क्या है इसको सावित्री धीरे धीरे हम लोगों को बताती है। क्योंकि मृत्यु क्या है, मृत्यु है वो हमारी सीमाएं। तो एक और अगर हम इसको सरल ढंग से समझें तो हमारी एक सीमित सोच है, सीमित समझ है, सीमित दृष्टि है, सीमित अनुभव है, उसी को हम सत्य मानते हैं। सावित्री कहां से आ रही है, असीम के क्षेत्र से आ रही है। यही खेल है, जो ओरिजिनल खेल है वेदों में, जिसको द्विती और अदिति, अंधकार प्रकाश, इग्नोरेंस नॉलेज, इसी का खेल चल रहा है। तो उस खेल में क्या होता है, एक दृष्टि वहां है, जैसे एक छोटा बच्चा है उससे आपने खिलौना छीन लिया तो बच्चा ये कहता है बड़े खराब हो आप, और माता पिता जो सच में प्रेम करते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये करना है तो तेरे भले के लिए करना है, बच्चा नहीं समझ पाता है। अब देखिए दो बिल्कुल अलग दृष्टि है। माँ की ओर से वो जब बच्चे का खिलौना छीन रही है तो बहुत प्रेम है उनका, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर आज खिलौना नहीं छीनूंगी तो कल बच्चा बड़ा होकर के भी ये खिलौना ही खेलता रहेगा। और बच्चे की दृष्टि से माँ बहुत क्रूर है क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ जिस प्रेम की बात हो रही है वह दिव्य प्रेम की बात हो रही है। ये शब्द हम बहुत हल्के से इस प्रयोग में लाते हैं, बहुत कैजुअली यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम जो प्रेम करते हैं वो दिव्य प्रेम है, पहली चीज। दूसरा मृत्यु, मृत्यु से भी हम केवल समझते हैं कि भाई हमारा शरीर जब पूरा हो गया तो मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से वह बात नहीं हो रही है, क्योंकि वैसे तो मृत्यु नहीं होती है, शरीर के बाद जीवन चलता रहता है, बात वहाँ उसकी नहीं हो रही है। मृत्यु वह अंधकार है, जैसे हम कल्पना करें और रोज रात को हम ये अनुभव करते हैं एक प्रकार की मृत्यु। रात को क्या होता है, जब व्यक्ति बिस्तर पे जाता है, आमतौर पर मैं साधकों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका जो कुछ दिन भर में हुआ अब कोई नहीं है, तो अब क्या है उसके अंदर वो शुरू होता है, वो सारा खेल तमाशा। अगर उसको जो अनुभव हुए हैं वो अंदर में उसके चेतना में चोट कर रहे हैं, आघात कर रहे हैं, उस पर वो केंद्रित हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे सब कुछ के प्रति ऑब्लिवियस हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और इसको अगर हम फिजिकल सिंबल के रूप में देखें तो इतना घना अंधकार जहां अपने शरीर को छोड़ के उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मृत्यु वो एक्सट्रीम अवस्था है जिसमें हम हमारे सिवा कुछ और नहीं देख सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, और हमारे सिवा भी क्या, केवल उस छोटे से बिंदु को जो पीड़ित है, जो कष्ट में है, या शरीर, बस वही हम देख पाते हैं, उसी को सत्य समझ रहे हैं। तो मृत्यु क्या करती है, हमारे जैसे आंखों पर एक इतना बड़ा अज्ञान का अंधकार डाल देती है कि हमको केवल जो हमारी इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, वही हमको सच लगता है। आध्यात्मिक जीवन कहां से प्रारंभ होता है, जब हम ये जानते हैं कि हम नहीं जानते। इस उपनिषद में कहा गया है कि अविज्ञातम विजानता, अविज्ञातम अभिजानता, कि जो कुछ मैं समझ रहा हूं, जो कुछ मैं जान रहा हूं, जो कुछ मैं देख रहा हूं, चाहे दुनिया बोलती हो कि नहीं नहीं आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं नहीं जानता, वहां से प्रारंभ होती है यात्रा। आमतौर पर व्यक्ति केवल अपने अहंकार के दायरे में छिपा रहता है और बहुत कष्ट भोगता है, बहुत कई बार देख के पीड़ा होती है कि क्यों वो कष्ट भोग रहा है, बिना कारण के कष्ट भोग रहा है, क्योंकि उसको केवल वो पर्दा हटाना है। और ये जब आप भगवान के प्रभाव में आएंगे तो कष्ट ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि भगवान तो छीनेंगे, झपटेंगे, आपके आवरण हटाएंगे। एक वो है ना भजन माँ काली के ऊपर है, सभी आवरण कर विदीर्ण, कूद पड़ी रण में आगे। तो वो सारे आवरण हटाएंगी, वो उसके पीछे जिसमें हम छिपे हुए हमारा सच्चा स्व, भगवान क्या चाह रहे हैं कि हम उसको देखें, लेकिन हमको पीड़ा होगी क्योंकि वो आवरण हमको बहुत अच्छा लगता है, दो प्रकार के आवरण हैं, एक है बुरा होने का आवरण, वो तो हम लोग या तो कवर करते हैं पेंटिंग डेंटिंग करके, हम बड़े अच्छे हैं, अच्छे होने का आवरण, मैं बड़ा अच्छा हूं, तो वो भी उतारना पड़ेगा आपको, तब भगवान अपनी पूर्णता में प्रकट होंगे। तो ये मूल रूप से सावित्री जो प्रेम को लाई है, वो प्रेम क्या है, वो सृष्टि का प्रथम भगवान का प्रवेश है इस सृष्टि में, जो अंधकार में चली गई है। और वो क्या कर रहा है प्रेम, धीरे 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 संसार को उठाता हुआ ले जा रहा है कहाँ, अपने ओरिजिन के पास, यही उसका काम है। वो प्रेम आपको ले जा रहा है, खींचता हुआ उसी में से जड़ तत्व की संभावना, जीवन मन इत्यादि करके वो भगवान से मिलाना, ये ओरिजिनल हमारा मिलन है जिसके लिए प्रतीक्षारत हैं। अब उस मिलन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो भटकाती हैं, अब वो हम सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो उस मिलन की ओर ले जा रहा है, और भटकाती भी नहीं है वो, तब वो तैयार करती हैं, क्योंकि उस परम मिलन के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं अभी, तो इसलिए वो धीरे धीरे मानवीय प्रेम, वस्तुओं से प्रेम, मनुष्य के पहले वस्तुओं से प्रेम, केवल अपने आप से प्रेम, फिर धीरे धीरे परिवार से प्रेम, इससे प्रेम, उससे प्रेम, लेकिन वो भगवान टिकने नहीं देंगे, क्योंकि ओरिजिनल प्लान क्या है कि वो प्रेम आपको वहां तक ले जाएगा, तो हर बार चोट पहुंचेगी, तो हम कहेंगे अरे आपने तो बड़ा ये क्या किया अरे दुनिया वाले, लेकिन दुनिया वाले ने सिलू सही कर रहा है, पर हम लोगों को बुरा लग रहा है। तो ऐसे करते करते प्रेम की यात्रा है, तो वास्तव में ये सारे संसार में जो शक्ति कार्यरत है वो प्रेम की ही शक्ति है, जो हम सबको ऊपर की ओर उठा रही है, ले जा रही है अपने अल्टीमेट, हमारा लक्ष्य क्या है, इस सारी सृष्टि का भगवान के साथ एक होना। तो एक तो थी ही, क्यों हुई अलग, अब ये एक अलग प्रश्न है जिसको सावित्री में अलग ढंग से इसकी चर्चा की गई है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि जब हम प्रेम के माध्यम से इस पूरी यात्रा से गुजर के एक होते हैं, तो उसमें एक एनरिचमेंट होता है, यानी कि भगवान भी अपने ओरिजिन में जो हैं, ये सृष्टि के माध्यम से गुजर के, देर इज ए इंक्रीज्ड रिचनेस, मतलब गॉड इंक्रीजेस, पैराडॉक्सिकल लग रहा है, पर भगवान भी अपने आप को, उनके अंदर जितनी सारी संभावनाएं जो पड़ी हुई हैं, साधना में लीन है, शिव जी ट्रांस में, जब माँ पार्वती आती हैं, फिर कार्तिकेय गणेश जी, ये सारे आते हैं और पूरी एक सृष्टि तैयार होती है, तो जो उनके अंदर छिपा हुआ है वो प्रकट होता है इस प्रेम के माध्यम से, और वो तब तक प्रकट होता रहता है जब तक वो फाइनली अपने अल्टीमेट, वो आनंद जिसने सृष्टि को जन्म दिया है, वही आनंद को व्यक्ति पूरी तरह अपने एक एक डिटेल में, हर एक कोशिका कोशिका में अगर हम उसमें जाएं, प्राप्त नहीं कर लेता। तो ये है यात्रा, इसी का वर्णन है। तो यहाँ मृत्यु केवल शरीर की मृत्यु की बात नहीं हो रही है, उस सब विचारधारा फिलॉसफी कह लें या हमारी दृष्टि जिसमें हम उस परम सत्ता को, ईश्वर को, भगवान को इस संसार से काट करके देखते हैं, तो प्रारंभ में तो कटे ही हुआ देखते हैं क्योंकि हम इस अंधकार में रहते हैं, इंद्रिय जो दिखाती हैं उसको सच, सबसे बड़े मूर्ख अगर कोई पूछे तो वह हैं जो केवल इंद्रियों पर विश्वास करते हैं। ये विज्ञान भी कहता है कि ये सच नहीं है, पैराडॉक्स ये है कि इंद्रियां हमको क्या दिखा रही हैं, एक वाइब्रेशंस हैं चारों तरफ, विज्ञान की दृष्टि से फ्रीक्वेंसीज हैं, आपने उसको नाम रूप कह दिया, कहा ये सच है, ये तो मूर्खता है, अगर वैज्ञानिक भी होगा तो वो इतना समझेगा। इसलिए कोई एक बुद्धिजीवी व्यक्ति भी है उस, वो तर्क पर भी चलेगा तो अंत में वो एग्नोस्टिसिज्म तक पहुंचेगा कि भाई मैं नहीं जानता, मेरे दायरे में मुझे चीज़ें ऐसी प्रतीत हो रही हैं लेकिन इसका सच क्या है मैं नहीं जानता, यहाँ तक तो पहुँच जाएगा कि भाई मैं तो सीमा में देख रहा हूँ। तो उस सीमा से प्रारंभ होती यात्रा, और मृत्यु वह शक्ति है हर चीज़ को सीमित कर देती है, सारे कलह क्लेश की जड़ है, सारे फसाद की, कि मेरी सीमा में जो मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, वही सच है, और इसके परे जो कुछ भी है वो सच नहीं है। एक छोटा सा एक मुझे लिमरिक याद आ गई, आई कांट हेल्प इट, वो थोड़ी फनी सी है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक व्यक्ति कहता है, अभिमान अभिमान देखिए, माय नेम इज बेंजामिन जोविट, ये लिमरिक है, लिमरिक एक चार लाइन की हास्य तरीके से कोई प्रस्तुति होती थी। माय नेम इज बेंजामिन जोविट, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति कह रहे हैं, आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम बेलियल कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है, नामी गिरामी, वहां से मैंने पढ़ाई की है, ऑल दैट इज नॉलेज आई नो इट एंड ऑल दैट आई डू नॉट नो इज नॉट नॉलेज। तो ये कोई भी समझदार व्यक्ति कहेगा भैया मूर्खता की ये पराकाष्ठा है, लेकिन आम व्यक्ति यही समझता है। तो वहां से प्रारंभ होती यात्रा, और हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके. डिबेट है प्रेम और मृत्यु का, और वी विल सी दैट. सावित्री में बहुत विस्तार से इसका वर्णन है, सारे व्यू पॉइंट्स. पहले मृत्यु का व्यू पॉइंट आता है, अब मृत्यु क्या कहती है प्रेम के बारे में, कि प्रेम क्या है. ऐसा नहीं वो झूठ, मृत्यु की ब्यूटी ये है यहाँ पर, मृत्यु यानी जो डिनाई करती है. हाँ, मृत्यु को बार बार, फिजिकल डेथ की बात नहीं हो रही है, वो एक अल्टीमेट उसकी विक्ट्री है. हम लोग मरे हुए लोग हैं, मतलब जीवन नहीं जीते हैं, तो फिजिकल डेथ तो एक समाप्ति होती है उस अज्ञान की. तो यहाँ पर मृत्यु क्या कह रही है कि ये सब जो स्पिरिचुअल बातें हैं, ये सब कुछ मूर्ख लोग हैं जो बैठ के मेडिटेट करना, क्या मेडिटेट करने से क्या होता है, तुम्हारे अंदर क्या है, कुछ नहीं है. साइंटिस्ट ने हाड़ मांस काट करके देख लिया, सोल कहीं नहीं है, भगवान नहीं है. वो ये नहीं देख रहा कि भाई तुम मान के चल रहे हो कि भगवान या सोल या जो भी है सब कुछ केवल मेटीरियल ट्रूथ है. पहला तो मिथ्यात्व कहाँ से है, पूरे विज्ञान का ये ओरिजिनल मिथ्यात्व है. क्या है कि मैटर इज द सोल रियलिटी. आप किस आधार पर ये कह रहे हैं, ये प्रिजम्पशन है. इट इज ए प्योर प्रिजम्पशन. मैटर भी अगर कहो तो हो सकता है देर आर स्टेट्स ऑफ मैटर जिसके बारे में हम नहीं जानते. विज्ञान भी स्वयं कहता है कि देर आर स्टेट्स ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट, फिफ्थ स्टेट, प्लाज्मा सारा, जिसमें जड़ तत्व ही बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करता है. लेकिन ये एक स्ट्रांग होल्ड, जहां से पहले मृत्यु का संवाद सुन लें. मृत्यु के अधीन जो हैं वो कैसे कहते हैं, पेज 609. अर्थ ओनली इज देयर एंड नॉट सम हेवनली सोर्स. संसार यही सच है. अगर आप बोलेंगे लेकिन ये कहीं से तो आया होगा, नहीं नहीं, पैराडॉक्स है, अजीब है. अपने आप ये घटना हो गई कि ब्रह्मांड बन गया. मतलब मूर्खता की हद होती है कि पूरी सृष्टि कोई एक छोटी सी बॉल बन जाए, कोई अगर उसको बोले कि ये बॉल, अगर हम पूछें बॉल कहाँ से आ गई, दूसरा बोले ऐसे ही आ गई, तो आपको क्या लगेगा कि भाई नई कारण जानते हो तो कह दो कि कारण नहीं मालूम है. पूरी सृष्टि अगर आप ब्रह्मांड को देखें, इस व्यापक ब्रह्मांड को, अद्भुत है. बल्कि वैज्ञानिक को तो सबसे पहले विश्वास करना चाहिए. मेरे साथ तो कम से कम यही हुआ था कि जितना मैं मेडिसिन को, एनाटॉमी ये सब पढ़ता था, मैं कहता हूँ ये तो भगवान का प्रमाण है, क्योंकि कैसे आए ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ऑफकोर्स उसको समझाने का या गोली देने का एक तरीका है, पर मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं. तो मृत्यु क्या कह रही है, अर्थ ओनली इज देयर एंड नॉट सम हेवनली सोर्स. इफ हेवेंस दे आर वेल्ड इन देयर ओन लाइट. कहते हैं होंगे, मृत्यु कह रही सावित्री को, होंगे उच्चतर लोक, उनका यहां से कोई लेना देना नहीं है. कभी सुना है उच्चतर लोकों के बारे में लोग ये कहानियां सुनाते हैं, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है. सुना है वहां घोड़ा उड़ता है, सात ट्रंक्स वाला, सात सूंड वाला एरावत है, यहां तो ऐसा कुछ नहीं है. तो कहां से मेल है. इफ अ ट्रूथ इटर्नल समवेयर रेन्स अनोन, इट बर्न्स इन ए ट्रेमेंडस वॉइड ऑफ गॉड. फॉर ट्रूथ शाइन्स फार फ्रॉम द फॉल्सहुड्स ऑफ द वर्ल्ड. हाउ कैन द हेवेंस कम डाउन टू अनहैप्पी अर्थ और द इटर्नल लॉज इन ड्रिफ्टिंग टाइम. How shall the ideal tread earth's dolorous soil where life is only a labor and a hope? Only the mute alone can forever be. In the mute, in the alone, there is no room for love. अब ये जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक बाइबल में एक सेइंग है, इसको भी शेरविंद कोट करते हैं, the devil quoting the scripture. अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगे अगर इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्ट, कई लोग कोट भी करते हैं सावित्री से, मिस कोट. ये डेथ कह रहा है, और ये आपको बहुत सारे स्वामी जी भी बोलेंगे, और लगता है कि हाँ बात तो सही है. ये शरीर में कैसे आ सकते हैं भगवान, शरीर दिव्य कैसे बन सकता है. हालांकि पैराडॉक्स ये है कि अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो सारी सृष्टि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है सच को. ओरिजिनली केवल पहाड़ थे, नदियां थी, तो उस समय भी अगर ये बात उठती कि भाई ये तो यही रहेगा, मैटर तो बन गया गैस से, जीवन कैसे आएगा? उस समय अगर कोई होता भगवान को रिप्रेजेंट करने वाला या स्वयं भगवान, कहते एक दिन ना ये पहाड़ उड़ेंगे, अरे अरे कपोल कल्पना, ये पत्थर उड़ेंगे देखना, अरे अरे ये फैंटास्टिक स्टोरीज, इंडिया से आया होगा ये कहानियां पत्थर उड़े, फिगरेटिवली उड़े, चिड़िया बनी, रेंगे, चले, मतलब अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर मतलब वो है तो यू विल सी कि दे आर इसके अंदर जीवन आया, जीवन ने बदल दिया। उसके बाद कहता कि नहीं नहीं ये सोचेगा, ये जो दिख रहा है ना बैठा हुआ कीट पतंगा, एक दिन सोचेगा अरे अब ठीक है, एक बार हो गया, बार बार थोड़ी होता है। सोचने लगा, सोचते सोचते मंगल ग्रह तक पहुंच गया, फिर आता कि भाई अब ये दिव्य बनेगा, अब सर प्लीज ज्यादा इमेजिन कर रहे हो। तो ये लॉजिकली हम देख रहे हैं कि संसार में यही हो रहा है, लेकिन मृत्यु वो नहीं देखना चाहती, इसको कहते हैं आंख वाला अंधा। तो यहां पर ये आ रहा है इन वेन, अब मृत्यु कह रही है ये सब, इन वेन इज सीन द शाइनिंग अपवर्ड वे, अर्थ लाइज अनचेंज्ड बीनीथ द सर्कलिंग सन, शी लव्स हर फॉल एंड नो ओमनीपोटेंस, हर मॉर्टल इम्परफेक्शंस कैन इरेज। कभी कभी लोग बोलते हैं, यहां भी बोलते हैं, अब यह आज ही कोई मुझे बता रहा था, कह रहा था ये सब ठीक है लेकिन सच तो ये है कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये चीज होगी नहीं, रूपांतरण वगैरह। तो अब मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा ये आपका सत्य होगा, पर आपका सत्य सबका सत्य ही आवश्यक नहीं है आपके लिए ये सच होगा, यू आर फ्री टू बिलीव। अब आपने ट्राई किया नहीं किया, कैसे हुआ, आपके अंदर क्या चीजें थी, वो हम नहीं जानते, मे बी इट इज ट्रू फॉर यू, यू कैन लिव विद दिस ट्रूथ। पर देखिए वो चीज को मृत्यु क्या करती है, उसकी एक फिलॉसफी बना करके सुपर इम्पोज करती है। बहुत से लोग मिले, कहते कहाँ है भगवान, हमने तो देखा नहीं। भाई आपने नहीं देखा, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप दिखाइए, हम कैसे दिखाएं, तुम देखना नहीं चाहते हो, तुम भी करो वो प्रोसेस जिससे हमने देखा है तैयार। नहीं नहीं वो तो मिस्टिक बातें हैं, ये यहां पे समस्या आ जाती है। अब सावित्री ये सब सुन रही है और फिर वो उत्तर देती हैं, पेज 612-611 पर है, समय की वो है 12 पर, हम लोग बस पैसेजेस इधर उधर से पढ़ेंगे थोड़े बहुत। अब सावित्री इसको क्या कह रही है, बट सावित्री रिप्लाइड टू द डार्क पावर, ए डेंजरस म्यूजिक नाउ दाउ फाइंडेस्ट ओ डेथ। डेंजरस म्यूजिक आप सुनेंगे कभी कभी भजनों में भी सुनेंगे, ऐसे इस तरह के स्ट्रेंस, सैड स्ट्रेंस, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, तूने काहे ये दुनिया बनाई मतलब भगवान ने मूर्खता कर दी अब वो देखिए बहुत सारे ऐसे आपको भजन भी मिल जाएंगे, मेल्टिंग दाई स्पीच इंटू हारमोनियस पेन एंड फ्लूटेस्ट एल्योरिंगली टू टायर्ड होप्स, दाई फॉल्सहुड्स मिंगल्ड विद सैड स्ट्रेन्स ऑफ ट्रूथ। कई बार लोग कहते भाई हमारे जीवन में हमने तो यही देखा कि प्रेम हमेशा मिथ्या होता है, तो मैं तो ये पूछता हूं कि तुमने प्रेम करना सीखा, जाना, तुमने जैसे प्रेम किया वो मिथ्या हो सकता है, पर जब तुमने सच को जाना ही नहीं तो प्रेम कैसे सच होगा, यू हैव टू फर्स्ट नो द ट्रूथ। पर ये सैड स्ट्रेन्स ऑफ ट्रूथ, खैर ये चलता रहता है दोनों का। अब हम लोग आ जाएंगे डिबेट जो होता है लव एंड डेथ का, उसके पहले मृत्यु सावित्री को एक अंतिम बार कह रही है, लव इज ए हनी एंड पॉइजन इन द ब्रेस्ट। सुनेंगे आप ये भक्ति वगैरह ना, ये कुछ पागल लोग होते हैं, कुछ ग्लैंड की कुछ प्रॉब्लम होती है, बोलते सुनने को आता है कि इनके कुछ ना दिमाग में वो या पैदाइशी कुछ नुस्क है, इसलिए वो भक्ति वगैरह की, किससे भक्ति कर रहे हैं रियली अगर आप देखें तो। कोई पूछता है कि पूछते हैं कि पांडिचेरी में क्या मिरेकल, मैंने कहा देखो सबसे बड़ा मिरेकल तो ये है कि ना जाने क्यों माँ से प्यार हो गया। तो कहते इसे मिरेकल, मैंने कहा देखा नहीं माँ को सुना नहीं उनको प्यार हो गया, क्यों हो गया, कोई लॉजिक नहीं है इसकी। आमतौर पर आप देखते हो, मिलते हो, कहीं से तो कुछ सुनते हो ना, उसके बाद आपका प्यार होता है, लेकिन क्या अब क्यों प्यार हो गया? और केवल प्यार हुआ यही नहीं है, ऐसा प्यार हो गया कि लगता है वो प्रेम की एक बूंद और संसार का पूरा प्यार दो पलड़ों में लग दो तो ये एक बूंद भारी होगी। तो लोग कई बार कहते हैं कि आप सिर फिरे हो, तो कहना पड़ता है कि भाई आप भी सिर फिरे हो, हमें तो लगता है कि आप अंधे हो, आप अनुभव ही नहीं कर पा रहे हो जो मेरे लिए लिविंग सत्य है। अब कौन इसमें सिर फिरा है ये तो भगवान जाने। लेकिन वो क्या कह रहा है, लव इज अ हनी एंड पॉइजन इन द ब्रेस्ट ड्रंक बाई इट एज द नेक्टर ऑफ द गॉड्स। क्यों? क्योंकि मृत्यु केवल उसी प्रेम को जानता है जो टूट जाता है, वो उसी को मानवीय प्रेम उसकी अल्टीमेट सीमा है। मनुष्य के प्रेम में भी एक उत्कृष्ट प्रेम है जो चैत्य का प्रेम है, वो उसको नहीं जानता है क्योंकि वो मृत्यु के अधीन नहीं है, मृत्यु वही जानता है जो उसके अधीन है चीजें। अर्थ ह्यूमन विजडम इज नो ग्रेट ब्राउड पावर एंड लव नो ग्लीमिंग एंजल फ्रॉम द स्काईज इफ दे एस्पायर बियॉन्ड अर्थ डलर्ड एयर अराइविंग सनवर्ड्स विद फ्रेल वैक्स एंड विंग्स हाउ हाई कुड रीच दैट फोर्स्ड अननेचुरल फ्लाइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि शेरविंद ने यहाँ वैक्स एंड विंग्स की बात करी है। ये ग्रीक स्टोरी है, एक्चुअली ग्रीक मिथोलॉजी की स्टोरी है, जहाँ पहली बार किसी ने कल्पना की कि डिडलस और इकारस ये दो भाई थे, तो ये कह रहे थे कि भाई हम उड़ना, ये चिड़िया उड़ सकती तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। तो उन्होंने कहा क्या करें, बोले कुछ नहीं है, उनके पंख जैसा कुछ बनाना है हमको, तो पंख जैसा बनाना है तो उनकी जो फेदर्स हैं वो तो मिलते थे, मिलते मतलब मार भी डालो तो मिल जाएंगे, तो उन्होंने वो फेदर्स लेके पंख बनाए। तो पंख कैसे जोड़ेंगे, वैक्स से उन्होंने जोड़ दिया पंख और हाथों से ऐड कर दिया, कहा बस हो गए, अब जैसे चिड़िया उड़ी हम भी उड़ सकते हैं। चिड़िया क्या करती है, इस तरह से करती है। ये रियल स्टोरी है डेडलस इकारस की, दोनों भाई हैं, हमारे यहाँ जटायु संपाति की, लेकिन हमारी बड़ी सोफिस्टिकेटेड स्टोरी है। तो ये दोनों कहा लेकिन उड़ेंगे फ्लाइट कैसे टेक ऑफ करेंगे, तो एक क्लिफ थी पहाड़ जहाँ एज है, अब एज के नीचे क्या है, खाई है, कहते बस हम दौड़ के जाएंगे और बस करना शुरू कर देंगे चिड़िया जैसे करती है। कुछ पता नहीं है ग्रेविटी का इसका, गया तो पहला तो गिर के चट्टान से टूट गया, दूसरा घबराए तो मिथोलॉजिकल स्टोरी है, वो थोड़ा चल उड़ने की चेष्टा की। अब वैक्स है, वैक्स आपको कब तक जोड़े रखेगी, जैसे ही सूरज की किरणें पड़ी वैक्स पिघल गई, दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या ये असफल रहा, ये प्रश्न करने वाली बात है। इस स्वप्न ने आज जेट एज को हमारे सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि मनुष्य ने वो स्वप्न देखा। मैंने दाविंची के म्यूजियम में एक्चुअली देखा हुआ है कि वो कैसे दाविंची ने ड्राइंग्स बनाए, केवल मानव शरीर के नहीं, एयरक्राफ्ट्स के। हमारे रामायण में पुष्पक विमान था कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आवश्यक ये कि किसी ने ये सोचा कि एक भौतिक स्तर का जहाज उड़ सकता है, आज वो सच हुआ। लेकिन मृत्यु क्या कर रही, केवल अभी ऐसी वो कहती है अरे सुपरामेंटल बॉडी, डेथलेस बॉडी, ये सब तो कल्पना है। लेकिन कुछ लोग अभी इस स्वप्न को देख चुके हैं, इवन वैज्ञानिक देख चुके हैं कि क्या हम मृत्यु से पार जा सकते हैं। तो यहां पर मृत्यु इस तरह के आर्ग्यूमेंट दे रही है। अब सावित्री फिर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट कैंटो है द डिबेट ऑफ लव एंड डेथ, पेज 621 पे सावित्री का प्रारंभ हो रहा है। Thou hast woven the ignorant mind into a screen. Ignorant mind screen कैसे बनता है, कि ignorant mind क्या है, जो मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, जानता हूँ वो सच है। अब यही आपका स्क्रीन बन गया। इसीलिए ज्ञान की पहली शर्त है, first condition I don't know। जब प्रारंभ वहां से करते कि मुझे नहीं मालूम, तब आप जान सकते हो। अगर आप ये मान के चलोगे कि मैं जानता हूं, तो संसार का कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा सकता कुछ भी। जो खुद ही, और ये खुद ही समझ आ जाता है, एक एग्नोस्टिक यही प्रोसेस से गुजरता है। वी ऑल हैव पास्ट, आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, कि भाई वी डोंट नो, आई कांट नो, ये सेंसेस तो लिमिटेड है, ये तो कोई भी बता देगा, माइंड की भी सीमा है, एनालिसिस से सारी चीजें आप कैसे जानोगे, क्योंकि ये वर्ल्ड तो एनालिटिक प्रोसेस के परे कोई चीज है, उससे निकलता है। कोई अंडे के अंदर एनालिसिस का प्रोसेस नहीं होती है, कोई मुर्गी ये नहीं कहती अच्छा मैं एनालाइज करके टाइमर फिट कर देती हूँ, इस टाइम पर ऐसे डेवलप नहीं होती है। वी ऑल नो कि ये एनालिसिस से नहीं उपजाए संसार, एक इंट्यूशन है, प्रज्ञा है जो काम कर रही है। तो जो प्रज्ञा से उपजा है उसको आप एनालिसिस से कैसे जान सकते हो? वो फैकल्टी आनी चाहिए। वेरी सिंपली आप एनालिसिस से उसके कोई बाहरी रूपरेखा को समझ सकते हो। कोई एनालिसिस करके बता दे, आप प्रोसेस बता दोगे कि ऐसे ऐसे हुआ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल शरीर के अंदर मनुष्य कैसे जन्म लेता है, प्रोसेस बता दोगे कहाँ से शुरू होता है। एक जाइगोट, जाइगोट का क्या वजन होगा? 0.00 बताएं कितने मिलीग्राम माइक्रोग्राम होगा। अगर आप फर्स्ट स्टेप पर रुक जाओगे उस प्रोसेस के और आपको कुछ नहीं मालूम है आगे का, तो आप बोलोगे इससे मनुष्य निकलेगा और वो जहाज उड़ाएगा, सेज बनेगा, यू विल से इट इज इम्पॉसिबल। अब प्रकृति कैसे करती है? प्रोसेस आपने जान ली, लेकिन वो लॉजिकल एनालिसिस से नहीं कर रही है, उसके अंदर एक प्रज्ञा है जो कार्य कर रही है। वो लॉजिक से उपजे नहीं है संसार, लेकिन वो प्रज्ञा इतनी ब्यूटीफुल है, जिसको कहते हैं कि पुष्प निकल आए, सुंदर तारा नक्षत्र, एक गैलेक्सीज, माउंटेन्स, रिवर्स, क्या प्रज्ञा है। इट्स अमेजिंग कि वो बच्चे का केवल आप जन्म देखो तो इट्स ए ट्रेमेंडस इंटेलिजेंस। तो यहां सावित्री कह रही है कि दाउ हैज वोवेन द इग्नोरेंट माइंड इन टू अ स्क्रीन। भगवान को जानने के लिए पहले यह मानना होता है कि हम नहीं जानते। स्क्रीन भगवान क्या, किसी भी सत्य को, एंड मेड ऑफ थॉट एरर्स परवेयर एंड स्क्राइब। कैसे बनता है थॉट एरर्स परवेयर? कि भाई मैं तो जानता हूं, वास्तव में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं। अब हम अपने थॉट से उसको जस्टिफाई करते जा रहे हैं। ये बड़ी कॉमन चीज है, आप किसी को भी कहीं इसमें खेल में पकड़ सकते हैं। तो देख तो डिस्कस कर रहा है या तू सोच रहा है, तो जानता है। एक है डिस्कशन के थ्रू आप एक निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग डिस्कस नहीं करते हैं। वो उनको ये एक मिथ्याभिमान होता है कि मैं जानता हूं, और डिस्कशन के द्वारा, विचारों के द्वारा वो अपने उस मिथ्या ज्ञान को, या जिसको समझते हैं कि ज्ञान है, उसको वो शब्दों में प्रकट करते हैं। तो ऐसे लोगों से डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है, उन्होंने ये ठान लिया है कि मैं जानता हूं। तो यहां पर उसकी बात हो रही है, एंड मेड ऑफ थॉट एंड ए फॉल्स विटनेस ऑफ माइंड सर्वेंट सेंस, एन एस्थीट ऑफ द सोरो ऑफ द वर्ल्ड, चैंपियन ऑफ ए हार्श एंड सैड फिलोसफी, दाउ हैस्ट यूज्ड वर्ड्स टू शटर आउट द लाइट एंड कॉल्ड इन ट्रूथ टू विंडिकेट ए लाई। शरीर सच है, ट्रूथ है, शरीर एकमात्र सत्य है, ये लाई है। ये सच है कि शरीर के दर्शन होते हैं, भगवान के ऑर्डिनरीली नहीं होते हैं। तो कॉल्ड इन ट्रूथ टू विंडिकेट ए लाई। अब अंत में कहते हैं, लाइंग रियलिटी इज फॉल्सहुड्स क्राउन। मिथ्यात्व की सबसे भयंकर क्या होती है उपाय? वो ऐसे बोलेगा कि आपको लगेगा कि ये सच बोल रहा है, लेकिन वास्तव में वो झूठ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोले कि भाई तुम तो व्यर्थ हो, यूजलेस हो, इट मे बी ट्रू आउटवर्डली, बट इट इज नॉट ट्रू ऑफ पोटेंशियलिटी। माँ से कई बार लोग कहते थे कि इसको आपने आश्रम में क्यों रखा है, उसको क्यों रखा है, क्योंकि बाहर से देखते थे। माँ वैसे नहीं देखती, कहती माई चाइल्ड आई ऑलवेज लुक अपवर्ड, आई सी द साइकिक बींग, तो कुछ और देख रही हैं। तो लाइंग Reality is falsehood's crown and a perverted truth her richest gem. O death, thou speakest truth, but truth that slays, I answer to thee with the truth that saves. Truth that slays क्या? अगर शरीर ही सच बात है, logically बात मैं कर रहा हूँ, pure logically, कि अगर शरीर ही एकमात्र reality है तो सबको जाकर के one should finish it, या गांजा भांग अफीम, because it makes no meaning. अगर यही सच है, इस ये अंत जो होता है जिसको हम कहते हैं यही सच है, तो फिर आप कुछ भी क्यों कर रहे हो? कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, एंजॉय लाइफ। फिर तो वो ज्यादा अच्छे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, उनको भी पता है भाई एक दिन हम जाने वाले हैं। आप क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो कि मैं पैसा कमाऊंगा, ऊपर उठूंगा, घर बनाऊंगा, बच्चा पैदा होगा, किस लिए? उसको दुनिया में ला ही क्यों रहे हो? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये सैड फिलोसफी। आगे जो अब कोर पकड़ रही है सावित्री की, मिथ्यात्व की कोर क्या है? कोई चीज जहां आधी फिनिश ड्राइंग को जब हम कहते हैं कि ये पूरी हो गई है। हमारे डिजरे की बात बताता हूँ, एक दीदी है, अब उनकी एज होगी 85 वैसे कुछ होगी। अब उनको देख के आपको लगेगा कि ये ड्राइंग ड्राइंग, अब वो कागज उनके सामने है, पेंसिल पकड़ा दी, तो ये कर पाएंगी, फिर धीरे धीरे वो बनाएंगी, अब रंग भर रही हैं। जब अंत होता है ना, तब पता चलता है कि ये क्या बना रही थी और इनके अंदर क्या छिपा हुआ है। अगर किसी भी चीज को आप आधा रोक के, जैसे कुछ लोग हैं इंटरवेल में पिक्चर देख के बाहर निकल आते, कहते हैं हम बहुत बोर हो रहे थे, अब आधे तो बोर हो गए हो, पूरी देख लो, कम से कम आपको पता चल जाएगा। तो ये जब आधी है, ये जगत अभी आधा है, ये हम कभी नहीं सोचते हैं। शेरविन पहले फर्स्ट आई मस्ट से कि ये कहीं नहीं आता है वेदों से अभी तक कि मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग जो स्टेयर करना चाहिए लॉजिकली। लॉजिकली हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए कि इवोल्यूशन इज नॉट फिनिश्ड, निश्चित रूप से। ये एक केवल आप प्योर तर्क से देखेंगे तो आप कहोगे कि जो भी इवोल्यूशनरी पावर है डिवाइन और जो भी मटेरियल, वो यहाँ तक आई है तो इसके आगे तो जाएगी जाएगी। लेकिन देखिए कैसे लोग ये कि नहीं नहीं बस मनुष्य है, अंत है, ये किस आधार पर नहीं मालूम। तो यहाँ पर सावित्री कह रही हैं, ओ डेथ दाउ लुकेस्ट ऑन एन अनफिनिश्ड वर्ल्ड। और कई बार मैं ये भी कि जो लोग कहते हैं सुपरमैन आएगा नहीं आएगा, तो मैं कहता हूँ मनुष्य बनने में 9 स्पेसीज सब स्पेसीज आई हैं, और अगर आप ठीक पहले के इस मनुष्य के फाइनल मनुष्य के पहले जो आप मनुष्य की स्पेसीज को देखोगे, सब स्पेसीज को, तो देख के लगे अरे ऐसा था मनुष्य, अभी तो फिर भी थोड़ा डिसेंट लगता है। तो वही बात कह रहे हैं कि अनफिनिश्ड वर्ल्ड assailed by the end of its road unsure, peopled by imperfect minds and ignorant lives, and sayest God is not and all is vain. आज तक नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, ये क्या लॉजिक है? बोलिए, लोग तो यही कहते हैं ये लॉजिक है। तो सबसे लॉजिकल चीज है कि आज तक नहीं हुआ नहीं होगा, भाई तुमसे ना होगा वो अलग बात है, पर होगा, कोई ना कोई तो करेगा, निश्चित रूप से यह होगा। जो चीज मनुष्य की कल्पना में या सोच में आ गई है, माने ना माने, वो निश्चित रूप से कल प्रकट होगी, वो कहीं नहीं लिखा हो तो भी प्रकट होगी। एक न्यू बीइंग का, न्यू स्पेसी की बात पिछले आई थिंक 60 जब से सिनेमा प्रोमिनेंट हुआ तो ये चीज आ गई है। स्टीवन स्पीलबर्ग की किसी ने फिल्म देखी होगी कुकून, फिल्म बनी उस पर कुकून 1-2 उतनी अच्छी नहीं, पर कोकुन वन, ये संभव है। इसके भी पहले टेलर डे चार्डर, ये मनुष्य की परिकल्पना में आ गई है कि मनुष्य के आगे कोई चीज आएगी। इवन राइज ऑफ द मशीन्स परवर्टेड है वो, लेकिन ये चीज की मनुष्य के आगे कुछ आएगा तो प्रारंभ हो गया है लेबर पेन उसके बाद जो होंगे। हाउ शेल द चाइल्ड ऑलरेडी बी द मैन, लॉजिक प्लेन, बिकॉज ही इज इन्फेंट शेल ही नेवर ग्रो। कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, बड़े इम्पेशेंट होते हैं मनुष्यों के ऊपर, बच्चे के ऊपर बहुत सैड होता है, दे गिव अप, अरे ये तो बेकार है। बेकार कुछ नहीं होता संसार में, जो भी सृष्टि में आया है वो बेकार नहीं होता है। उसको कितना समय लगेगा वी डोंट नो, वो भगवान का खेल है उसकी सोल की, लेकिन व्यर्थ नहीं होती कोई भी चीज़, कोई ना कोई उसके अंदर धीरे 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 वो बढ़ती जाएगी। हाउ शेल द चाइल्ड ऑलरेडी बी द मैन, बिकॉज ही इज इन्फेंट शेल ही नेवर ग्रो, Because he is ignorant, shall he never learn? अब आगे देखे इन एस, अब वो लॉजिक दे रही सावित्री कि तुम तो कह रहे हो डेथ कह रही ना कोई, ये सब सुपरमैन आगे, इसके आगे ये सब व्यर्थ की, ये कैसे संभव है? तो सावित्री लॉजिक दे रही है, इन ए स्मॉल फ्रेजाइल सीड ए ग्रेट ट्री लर्क्स। बीज के अंदर पूरा वृक्ष है, प्रोसेस, यस वी ऑल नो द प्रोसेस, लेकिन वो प्रोसेस हु इज ड्राइविंग दैट प्रोसेस, व्हाट इज ड्राइविंग दैट प्रोसेस, वी डोंट नो। कैसे हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आम के पेड़, कहावत है बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए? ये कैसे होता है कि आम के बीज से आम का ही वृक्ष निकलेगा? मतलब उस रैंडम प्रोसेस में जो अंदर में हो रही है, देर इज अ, जैसे कि कोई हाईली ट्रेंड कंप्यूटर के अंदर चीजें फीड कर दी गई हो कि आप कितने भी एरर करो निकलेगा अंत में यही। हाउ इज इट? ये अपने आप में एक विचार का विषय है। ए लिटिल एलिमेंट इन ए लिटिल स्पर्म इट ग्रोज एंड इज ए कॉन्करर एंड ए सेज। Then will thou spew out death, God's mystic truth, deny the occult spiritual miracle. Still will thou say there is no spirit, no God. अब death क्या चाह रही है? बार बार discourage करना. मनुष्य हो गया, समा हो गया, बस अब यहां छोड़ दो. ये डेथ का काम है, डिवाइड करना, सेपरेट करना. मनुष्य भगवान, अगर भगवान है भी तो दोनों का कोई मेल नहीं. आप देखिए ऐसे फिलॉसफीज आई हैं, दर्शन आया, और अभी भी आप देखेंगे ऐसे लोग हैं जो इसको स्पिरिचुअल उसका नाम देखे कि भगवान तो केवल सर्वसाक्षी हैं, बस उनको इससे क्या लेना देना है इस संसार से. बिवेयर, बी केयरफुल. सर्वसाक्षी एक भाव है भगवान का, पर वो केवल साक्षी हैं ये सत्य नहीं है. क्योंकि तब आपने क्या किया, काट दिया उनको इस पृथ्वी के साथ. साक्षी भी हैं, पर साक्षी ही हैं ये अंतर है. इन गॉड कंसील्ड द वर्ल्ड बिगैन टू बी, टार्डली ट्रेवल्स टुवर्ड्स मैनिफेस्ट गॉड, आवर इम्परफेक्शन टुवर्ड्स परफेक्शन टॉयल्स. द बॉडी इज द क्राइसिलिस ऑफ ए सोल. क्राइसिलिस क्या होती है, जो घोंगा क्या बोलते हैं उसको, शेल के अंदर जो होता है ना, वो जो भी चीज, हाँ शेल, शेल जो होती है, जो घोंगा हम लोग बोलते हैं, स्नेल, स्नेल जो होता है, तो वो जो बाहर में उसके शेल बनी हुई है, तो क्या करता है वो कई बार अपने आपको उसके अंदर छिपा लेता है, उसकी प्रोटेक्टिव शेल है. टॉर्टोइस की भी होती है, वो शेल के अंदर अगर छिपा ले, ऐसे टर्टल होते होता है जो, उसको संसार का कोई जानवर नहीं मार सकता. शेर उसको आता है, बहुत कोशिश करता है, उल्टा पुल्टा करता है, लेकिन कैनॉट, क्योंकि वो शेल इतनी स्ट्रांग है, वो किसी भी तरह से उसको नहीं, अगर वो निकल आए, वो निकलेगा नहीं जब तक वो डेंजर नहीं चला गया. उसी तरह कैटरपिलर के अंदर क्या छिपी होती है, बटरफ्लाई. तो क्राइसिलिस आउटर कवरिंग, बॉडी केवल आउटर कवरिंग है. किसको उसने छिपाया हुआ है, जैसे सीप के अंदर मोती. द इन्फिनिट होल्ड्स द फाइनाइट इन इट्स आर्म्स. मैटर इट्स मिस्ट्री हाइड्स फ्रॉम इट्स ओन आईज. कोई सोचे कि जड़ तत्व तो कहां से निकला है, बड़ी फैसिनेटिंग है ये स्टडी. और वो कहां से निकला है, उसके ओरिजिन में, आई एम रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू टॉक अबाउट, यू विल एंड अप विद द डिवाइन. जड़ तत्व के जो लेयर्स हैं, विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, कोई विज्ञान की बात, प्योर साइंस की बात कर रहा हूं, फिजिक्स, जो आपको जड़ तत्व को अपने ओरिजिन में अगर आप ले जाएंगे तो यू विल बी कंपेल्ड टू टेक इट कि एक अक्षय कोई सत्य है जहां से निकला है. ऑफकोर्स यू विल यूज द वर्ड स्पिरिट या वट एवर, प्योर मैटर, ट्रू मैटर, वहां तक तो ले जाएगा ये, जिसको आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल सब्सटेंस. फिर सावित्री उदाहरण देती हैं, मैटर इट्स मिस्ट्री हाइड्स फ्रॉम इट्स ओन आईज, ए स्क्रिप्चर रिटन आउट इन क्रिप्टिक साइंस. क्या बात है कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर है, वेद कहां लिखे हुए हैं, जड़ तत्वों में लिखे हुए हैं. ऑल हियर बेयर्स विटनेस टू हिज सीक्रेट माइट, इन ऑल वी फील हिज प्रेजेंस एंड हिज पावर, ए ब्लेज ऑफ हिज सॉवरेन ग्लोरी इज द सन. A glory is the gold and glimmering moon. A glory is his dream of purple sky. A march of his greatness are the wheeling stars. मतलब आप जहां देखो कहां नहीं दिखेगा, वह परम सौंदर्य, वह आनंद, वह प्रेम जिसको हम भगवान कहते हैं, वो प्रकाश. His laughter of beauty breaks out in green trees. His moments of beauty triumph in a flower. The blue seas chant, the rivulets' wandering voice are murmurs falling from the eternal's harp. This world is God fulfilled in outwardness. ये सत्य सावित्री. और सच में अगर आप, जैसे मैं बात कर रहा था, इवन प्योर फिजिक्स की बात करें, फोटोन, लाइट पार्टिकल्स, मास नहीं है उसकी, जो स्पीड है, इट कैन साइमल्टेनियसली, वो यहां भी है वहां भी है, लेकिन आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं, अद्भुत है. वास्तव में अजब तेरी कारीगरी रे. ये अपने आप होने वाली घटना की रैंडमली सब कुछ हो गया. वो चेतना जो पीछे कार्य कर रही है वो परम प्रज्ञा है. यही बात सावित्री उनको मृत्यु को बता रही है. अब समय की सीमा है, इसलिए हम लोग अब अंतिम पाठ पे आते हैं. अगेन, मृत्यु का क्या थीसिस है, कि ये संसार ही सत्य है, जड़ तत्व ही सत्य है, और यदि कोई भगवान है तो वो इसके परे, उसका इस संसार से कोई लेना देना नहीं। ये ब्रॉडली मृत्यु की ये थीसिस है जो हमको सुनने में मिलेगी बहुत जगह से। लेकिन सावित्री की क्या थीसिस है? भगवान ही ओरिजिन है, भगवान ही मध्य है, भगवान ही अंत है, सृष्टि की नियति दिव्य है क्योंकि इसकी ओरिजिन दिव्य है। ये उसकी थीसिस है सावित्री की। अब यहां पे सावित्री और उदाहरण दे रही हैं पेज 632 पर, और वहीं पर हम लोग वी कैन आउट ऑफ द वॉइड दिस ग्रैंड क्रिएशन रोज। विज्ञान क्या बताता है कि अंधकार से, महाशून्य से ये सृष्टि निकली, और ये प्योर साइंस की भाई ये अलग अलग ऑब्जेक्ट कैसे आए, तो साइंस कहती है एक एनर्जी। अब वो एनर्जी क्या है, कैसी है, वो एक अलग विषय है, अगेन विल नॉट एंटर इन टू इट। लेकिन ये एनर्जी के विस्फोट से प्रोसेस अगेन पता है कि वो गैस निकली, गैस धीरे धीरे होती हुई पंच तत्व बने, पृथ्वी बनी, या सारे प्लैनेटरी सिस्टम बने, कैसे बने, ड्राइवर कौन है उसके पीछे, अपने आप बने। स्ट्रेंज, फॉर दिस द स्पिरिट केम इन टू द एबिस एंड चार्ज विद इट्स पावर मैटर्स अननोइंग फोर्स। अब यहां पर वो पार्ट बता रहे हैं जो साइंस नहीं जानती कि ऊर्जा जो जड़ तत्व के अंदर छिपी है वो कहां से आई, स्पिरिट से आई, स्पिरिट छिपी यहां पर उतर गई, और वह शक्ति अब नृत्य कर रही है, नृत्य करते 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 वो अपने अंदर से जड़, जीवन, मनुष्य ये सब प्रकट कर रही है। अद्भुत पंक्तियां हैं, ए मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन वर्क्स। अब सावित्री उदाहरण दे रही हैं कि सारी सृष्टि में धीरे धीरे एक रूपांतरण ही हो रहा है। यह हम लोगों ने सुना है कि हर चीज परिवर्तनशील है, यह आधा सच है। जब हम ये कहते हैं ना सब कुछ परिवर्तनशील है, ट्रांजिएंट है, लगता है फिर क्या फायदा, सब तो बदल जाएगा। नहीं परिवर्तनशील के साथ ये भी है कि एक दिशा है, वो कहीं जा रही है। ये परिवर्तन कैजुअल नहीं है, अकस्मात होने वाली रैंडम प्रोसेस नहीं है, उसकी एक दिशा है और एक गोल है जिधर वो जा रही है, क्योंकि इसका जो ड्राइवर है इस परिवर्तन का वो स्वयं भगवान है, और वहां उसकी बात हो रही है। ए मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन वर्क्स, ऑल अवर अर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम मड एंड एंड्स इन स्काई, एंड लव दैट वॉज वंस एंड एनिमल्स डिजायर। अ प्रेम, स्वयं सावित्री सीक्रेट बता रही है प्रेम का, जिसको आम तौर पे हम प्रेम कहते हैं, जिस पर बड़े बड़े गीत बन गए, ये बन गए, वो क्या है, केवल एक बाहरी आकर्षण विकर्षण, एनिमल्स डिजायर। देन ए स्वीट मैडनेस इन द रैप्चरस हार्ट। फिर जब मनुष्य बन जाता है तो उसी ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कि तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो, चार दिन चलेगा उसका ये खेल पर उसी में वो थोड़ा जोड़ देता है स्वीट मैडनेस, वो पागलपन होता है ना, लगता है यही मेरा सब कुछ है उस थोड़े दिन बस प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, ये सब कुछ कुछ नहीं हो जाएगा पेड़ की। इसलिए पुरानी पिक्चर है, सारी पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा के खत्म हो जाती है। शादी के बाद नहीं दिखाते थे, बड़ी हिम्मत की जब लोगों ने शुरू किया दिखाना शादी के बाद क्या होता है। अब देखिए 60s की मूवी, 70s लव हो रहा है, उसमें जो कुछ हुआ अंत में वो एक गाड़ी जा रही है जिसमें हनीमून लिखा हुआ है, क्योंकि वो डेयर नहीं करते थे दिखाने का उसके बाद की सच्चाई लेकिन फिर धीरे धीरे वो, लेकिन क्या वही सच है? नहीं, उसके आगे का भी सच है। तो एंड लव दैट वॉज वंस एन एनिमल्स डिजायर, देन ए स्वीट मैडनेस इन द रैप्चरस हार्ट। इसके आगे कहां प्रेम जा सकता है? एन आर्डेंट कॉमरेडशिप इन द हैप्पी माइंड। जब आपके विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों में एक कोई चीज मिलती है, ये थर्ड लेवल है। उसके आगे एन आर्डेंट कॉमरेडशिप इन द हैप्पी माइंड बिकम्स ए वाइड स्पिरिचुअल यर्निंग स्पेस। जो रियल प्रेम है, चैत्य में जब दोनों के एक ही अग्नि जल रही है, तब ये प्रेम की रियल सेंस में शुरुआत होती है। एन आर्डेंट ए लोनली सोल पैशंस फॉर द अलोन। तब आप टुगेदरनेस ब्यूटीफुल, बड़ी अलग तरह की, और माने शब्द यूज किया है इसके लिए श्री अरविंद माता जी ने, कॉम्प्लीमेंट्री बींग्स। बड़ा रेयर है कि एक ही अभिप्सा दोनों के हृदय में उठ रही है। The heart that loved man thrills to the love of God. ये बहुत मुश्किल है, ये समझाया नहीं जा सकता किसी को भी। जो मानवीय प्रेम के आगे नहीं समझता है उसको आप कितना भी बोल दीजिए कि भैया जो भगवान से प्यार है ना, ये मतलब आपको ऐसे लगे कि ये ब्रह्म कमल को सूंघने के बाद आप पता नहीं क्या चीज, मट्टी की कोई चीज सूंघ रहे हैं, लेकिन वो है, यू कैनॉट एक्सप्लेन। जिसने उस चीज को टच नहीं किया है, भगवान के प्रेम को नहीं छुआ है, वो ये नहीं समझ सकता है, क्योंकि इसमें उसको रैप्चर आ रहा है, मैडनेस आ रही है, मजा आ रहा है, इसी को समझ रहा है। ए बॉडी इज हिज चेंबर एंड हिज श्राइन, तब क्या होता है कि ये देह ही भगवान की श्राइन बन जाता है। देन इज अवर बीइंग रेस्क्यूड फ्रॉम सेपरेटनेस, अब वो मृत्यु को पूरा रास्ता बता रहे हैं कि देख तुझे आना है तो भी चल सकता है, ये अलग अलग, जब तक ये है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं तब तक प्रेम नहीं है, मैं और तू है, मैं और तू बन जाता है बाद में, तू और मैं, फिर बन जाता है तू तू मैं प्रेम कब शुरू होता है, देखिए स्टार्टिंग ग्राउंड जब अंतर समाप्त हो जाता है, रेस्क्यूड फ्रॉम सेपरेटनेस। मैं तुम्हें नहीं प्रेम करता हूं, मैं स्वयं को प्रेम करता हूं। अब अगर स्वयं हमारा आइडेंटिफाइड है विद द लोअर नेचर, तो वो उसी चीज को कि भाई तुम्हारा पर्स अच्छा लगता है क्योंकि मुझे भी पैसे से प्रेम है, लेकिन अगर हायर सेल्फ डिवाइन, तो मैं तुम्हारे अंदर उस दिव्यता को प्रेम करता हूं। हर किसी में होती है दिव्यता की एक सुगंध होती है, दिव्यता का कुछ एस्पेक्ट होता है, उससे प्रेम करता हूं। ऑल इज इट सेल्फ, ऑल इज न्यू फेल्ट इन गॉड, और तब क्या अनुभव होता है, ए लवर लीनिंग फ्रॉम हिज क्लॉस्टर्स डोर Gathers the whole world into his single breast. तब क्या होता है, ये जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये समाप्त हो जाता है। ब्रह्म सत्यम न मिथ्या, जगत सत्यम न मिथ्या, क्यों, क्योंकि जो उससे उपजा है, how can he stop loving this creation, जो उन्हीं से निकला है। Then shall the business fail of night and death when unity is won, when strife is lost and all is known and all is classed by love. अभी हम कैसे क्लासिफ करते हैं, बाय द ईगो। ईगो क्या करता है, अपना बनाना चाहता है, फिर उसका एक दूसरा खेल होता है, मैं तुम्हारा हूं, मिसलेड मत होइएगा वो स्टार्ट करने के लिए गेम है। लेकिन जिस दम ये समझ जाते हैं कि फ्रॉम द डिवाइन टू द डिवाइन आई मेक स्पीड, ये दो नहीं है, एक ही सेल्फ है जो दो शरीर में है, उस समय सच्चे प्रेम की शुरुआत होती है। तो यहां पर सावित्री कह रही हैं, एंड ऑल इज नोन एंड ऑल इज क्लैश बाय लव विद ए कैपिटल एल, हु वुड टर्न बैक टू इग्नोरेंस एंड पेन। तो खत्म हो जाएगा, आपको किसी अवस्था में दुख नहीं होगा। क्यों, कभी आपके हाथ से अगर अपने हाथ को चोट लगती है तो आप क्या कहते हो, जोर से भी लग गई, दांत जीभ आ जाती है ना दांत के नीचे है, कई बार मैं ये एग्जाम्पल देता हूं, तो क्या आप दांत अपना तोड़ देते हो या तोड़वाने चले जाते हो या दांत को गाली देते हो, नहीं करते ना। लेकिन किसी और के दांत से, किसी और की वाणी से आपको चोट पहुंची, हाँ मुझे ऐसा कह दिया जिस दिन आप ये जान लोगे वो दांत भी मैं ही हूं समस्या ही खत्म, सारे साइकेट्रिस्ट बेचारे सब बैठे रह जाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम थी ही नहीं, आप सोच रहे थे कि दूसरा है, जब यूनिटी आ जाती तो दूसरा होता ही नहीं है, तब खेल में रियल मजा आता है, क्योंकि एक ही है जो अलग अलग रूप धर के खेल रहा है। ये नहीं कि फिर आप बिजधर को अपने गले में लगा लोगे कि हाँ मेरा भाई है, नहीं लेकिन आप उससे घृणा द्वेष क्रोध भय ये नहीं करोगे, आप देखोगे कि वो भी बेचारा जीव कैसा छिपा हुआ डरा हुआ रह रहा है, आप कहोगे भैया आपने घर में रहना है, होता है हमारे डेजरे में एक बार आ गया, सांप सपेरे को बुलाओ ये करो, ने कहा क्या प्रॉब्लम है उसको प्रे कर लो, ने कहा देखो भाई चूहे उधर है ये हमारे और मेरे स्कूटर के ही बगल में स्टैंड वहां पर लोगों ने, तो मैंने कहा यहां क्यों आ रहे हो, यहां क्या मिलेगा तुमको, डर रहे हैं लोग, वो नहीं आया उसके बाद, समझते हैं वो, दे आर वेरी, चूहों को भी समझाया, वो भी ऊपर आके अंदर में आके, तो ये चूहा मार दवाई, मैंने कहा कुछ जरूरत नहीं है, प्रे कर उनको समझाओ कि भाई ये तुम्हारा खाना पीना हम लोगों ने गड़बड़ किया है, वो पेड़ वेड़ के वो सब कटे थे, घर बनाए, अब ठीक है हो गया ना, ये एक माँ के काम के लिए किया है, तुमको मिल जाएगा, बहुत जगह है यहाँ पर तुम्हारे भोजन के लिए. एक्चुअली आई हैव प्रेड एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड द रैट मीनस कंप्लीटली फिनिश्ड. काट रहे थे लोगों को, तो वी कैन डील बड़ा डिफरेंटली. ये नहीं कि आप चूहों को मेरे घर में पाल लो, ये नहीं करते हो आप, ये जानते हो डिफरेंस, पर आपका वे ऑफ डीलिंग, दिस टू इज डिवाइन. माँ की कितनी स्टोरीज हैं, वो कोबरा आके अंदर चला आता है और फन फैला के उनके कार के अंदर बैठ गया, तो माँ ने उसकी आंख में देखा और फिर वो अपने आप उतर के चला गया. तो दादा ने कहा, माँ ऐसे ऐसे जीवों को तुम्हें नहीं शरण देनी चाहिए, मतलब वो कुछ भी कर सकता था. तो माँ कहती है, मैं क्या करूँ, मैं माँ हूं ना, माँ हूं ना, यश हूं. अब देखिए वो एक अलग थॉट है. एक बार और वो बताती हैं, जब वो बैठी हैं ध्यान कर रही हैं और अचानक अनकंफर्टेबल होके खोलती हैं, देखती हैं अलजीरा की बात है कि सामने एक विषधर पूरा फन फैला के खड़ा हुआ है. तो उन्होंने आए, ये क्यों आया है, ये तो ऐसे अपने आप नहीं आते हैं किसी को काटने. फिर उनको लगा, ओ शायद मैं इसके घर पर बैठ गई हूँ, विच वॉज ए फैक्ट, बिल पर बैठ गई थी. तो धीरे 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 सरकती हैं कि उसको, और इस भाव से कि देखो मैं तुम्हारा घर भूल हो गई है, मैं छोड़ रही हूँ. तो जैसे ही वो थोड़ा सा सरकी, उसने अपना, वो फैक्ट था कि वो बिल पे बैठी थी, तो वो झट से उसने अपना सिर नीचे किया और वापस नदी में चला गया नहाने के लिए. तो पूरी सृष्टि के साथ संबंध बदल जाता है. ये नहीं कि हम मेजर्स को खो देते हैं, लेकिन हमारा संबंध, फिर कोई लड़ाई झगड़ा दुख क्लेश शोक सब समाप्त. इसी के साथ हम लोग समाप्त करेंगे. When unity is won, when strife is lost, and all is known, and all is clasped by love. Ego की clasp नहीं, ego में तो मेरा तेरा है. All is clasped by love. Who would turn back to ignorance and pain? पर अंतिम दो लाइन सावित्री कहती है, लेकिन स्मरण रखना मैं किस प्रेम की बात कर रही हूं. My love eternal sits throned in God's calm. शांति है उस प्रेम में, अपार शांति है, वो restlessness नहीं है. For love must soar beyond the very heavens and find its secret sense ineffable. It must change its human ways to ways divine, yet keep its sovereignty of earthly bliss. वेज डिवाइन का मतलब ये नहीं कि आप बोलें, भाई देखो हमने पढ़ा है ना प्रेम, वेज डिवाइन, अब मैं केवल ध्यान करूंगा, तुम हमारा ध्यान रखना. ये नहीं मतलब है. डिवाइन तो खेलते हैं पूरी सृष्टि के साथ, लेकिन ईगो से नहीं खेलते हैं. सत्य के आधार पर हमेशा जुड़े रहते हैं, ज्ञान युक्त होते हैं, शांति काम. शिव कृष्ण जी को देखो पूरी महाभारत में, और ये बड़ी अच्छी चीज दिखाई थी उन्होंने, वो स्माइली कर रहे हैं. शिव जी जब संघार भी कर रहे हैं तो वो स्माइल करके डांस कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम है उसके अंदर. जहां प्रेम है वहां आनंद है, जहां प्रेम है वहां एकत्व है, जहां प्रेम है वहां विजय है, जहां प्रेम है वहां भगवान का काम है. जय मां.
वो प्रेम हमको हो जाए, तो प्रेम ही प्रभु हमारे हो जाए. धन्यवाद. मैं हमारे आदरणीय वक्ता डॉक्टर आलोक पांडे जी के प्रति अपने गहन श्रद्धा और हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती हूँ. आपके प्रत्येक वाक्य में श्री अरविंद और श्री माँ के प्रति आपकी साधना, समर्पण और गहन अध्ययन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है. हम सभी की आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ. अपने अपना अमूल्य समय देकर हमें इस दिव्य विषय पर मार्गदर्शन प्रदान किया. कृपया हमारी ओर से इस विनम्र कृतज्ञता को स्वीकार करें.
जय माँ.